चक्षुरो न मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णववांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव श पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दान जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय
जन रंजना Yeah. I'm not afraid.
धारी राधा गिरी धारी राधा गिरी धारी श्री गौर निताय की शील प्रभुपाद की वंशी विमोषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिम बफल धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के ये छठे सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 5 दिनों से हम सब लोग यहां पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक कर रहे हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त करके, इतने सुंदर कर्ण प्राप्त करके भगवान की कथा सुनना, मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि कोई भगवान की कथा नहीं सुनता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनत नहीं काना, जो अपने कान से भगवान श्री हरि की कथा नहीं सुनते हैं, श्रवण रंग हरि भवन समाना। कथा नहीं सुनने वालों के कान सर्प के रहने के बिल के समान है। जिनके मुख पर भगवान का नाम नहीं है, ऐसे लोगों की वाणी मेंढक की वाणी के समान है। संसार में कथा तो सब लोग करते हैं, सब लोग बोलते हैं, रात दिन बोला करते हैं, परंतु भगवत विषय को छोड़कर सांसारिक विषय के बारे में बोलना ये मेंढक के बोलने के समान है। बारिश की ऋतु में आप सब लोग देखते होंगे, बारिश की ऋतु में मेंढक बहुत बोला करते हैं, राव राव करते रहते हैं। अब जानते होंगे मेंढक का काल है सांप, सांप मेंढक को खाता है और सांप निरंतर मेंढक को ढूंढते रहता है और यह मेंढक महाशय जोर जोर से चिल्लाता है। सांप कैसे भी करके उस चिल्लाने वाले मेंढक को आवाज से ढूंढ लेता है और गप करके खा जाता है। भगवान की कथा को छोड़कर संसार की कथा हम करते रहेंगे तो और कुछ नहीं, हम केवल काल को निमंत्रण देते हैं। काल आता है और व्यक्ति को नष्ट करके चला जाता है, इसलिए कान की सार्थकता भगवान की कथा से और वाणी की सार्थकता भगवान के नाम से कर लेनी चाहिए, नहीं तो यह मनुष्य जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। वास्तव में यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष्य देहो, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ। 84 लाख की योनि काटने के बाद ये मनुष्य देह प्राप्त होता है और उसमें भी क्षण भंगुर है। ऐसा भी नहीं कि 100 साल तक जिएंगे, किसी की गारंटी नहीं है। क्षण भंगुर इसे कहा गया है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुव अर्थदम। एक तो दुर्लभ है और ऊपर से कभी भी नष्ट हो सकता है, तो इस कभी भी नष्ट होने वाले इस मनुष्य देह से भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। अरे यह जीव तो कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी नहीं नष्ट होने वाले देवता भी यह कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। किसी भी समय मरने वाला मनुष्य यह कथा क्यों नहीं सुनेगा, कथम। परीक्षित महाराज तो भागवत के 10वें स्कंद में आश्चर्य करते हैं, निवृत्त तर्षे उपगीय मानाद भवोषदाच्योत्र मनोभिरामाद कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरचित विना पशुगनाद। हे सुखदेव गोस्वामी, आपके मुख से निकली हुई यह भागवत कथा सब लोग सुनेंगे। निवृत्त तर्ष जो तृष्णा से मुक्त हो गए हैं, शुद्ध भक्त मुक्त लोग भी आपकी भगवान की कथा सुनेंगे। जो लोग मुक्त होना चाहते हैं ऐसे मुमुक्षु भी भगवत कथा सुनेंगे और जो रात दिन विषयों में आसक्त रहते हैं ऐसे लोग भी भगवान की कथा सुनेंगे। क्योंकि भगवान की कथा जो है भव औषधात, इस भवसागर के रोग से मुक्त होने के लिए औषधि के समान है। भक्तों, हम सब लोग को एक रोग लगा है। रोग तो बहुत सारे हैं परंतु सबसे बड़ा रोग हमको लगा है और उस रोग का नाम है भव रोग। हम सब लोग भव रोग में फंसे हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः माता के गर्भ में आना जन्म लेना, दुख भोगतना मरना जन्म लेना मरना जन्म लेना, ये एक रोग नहीं तो क्या है। इसे भव रोग कहा जाता है, सबसे बड़ा रोग। साधारण रोग से मुक्त होने के लिए मेडिकल में जाकर हम दवाई ले लेते हैं, परंतु इस भव रोग से यदि मुक्त होना है, कहते हैं भव औषधात, भव रोग से मुक्त होने के लिए एकमात्र औषधि भागवत कथा सुनना है। यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा सुनता है तो वह भव रोग से मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर के मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान की कथा भव रोग से मुक्त कराने वाली, और संसार की दवाई तो कड़वी भी होती है। बुखार आता है दवाई लेते हैं, पीना पसंद नहीं करते हैं। परंतु यह कथा मनोभिरामात मन को आनंद देने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसमें कष्ट है। संसार में जितने भी साधन है, योग, ध्यान, तपस्या, यज्ञ, ये सब में कष्ट है, परंतु इस साधन में कोई कष्ट नहीं। केवल बैठना है और बैठकर श्रवण करना है। आनंद ही आनंद इसमें प्राप्त होता है। इस संसार में ऐसा कौन है जो यह कथा नहीं सुनेगा। कते पुमान विरजित विना पशुनाथ, केवल कसाई के अलावा सब लोग यह कथा सुनेंगे। दूसरे शब्दों में यही कह दिया भागवत में कि जो लोग भागवत कथा नहीं सुनते हैं वे कसाई हैं। पशुनाथ, पशुघाती, पशु का अर्थ होता है अपश का अर्थ होता है आत्मा। वास्तव में संसार में भी कुछ पशुघाती होते हैं, ये तो अच्छे हैं, परंतु कथा नहीं सुनने वाले तो अपने आत्मा का ही हनन करने वाले हैं, सबसे बड़े कसाई। अतः तात्पर्य यह है, मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान की कथा सुनकर कर लेनी चाहिए। यूं तो यह मनुष्य जीवन भगवान भगवत विमुख रसों से बीत रहा है, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ क्षण भागवत और भगवान का श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग से आप सब लोग अवगत हो, कुछ लोग नए हैं उनके लिए इतना ही कहना है, भागवत के छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज की कथा है। पुत्र के मर जाने पर चित्रकेतु महाराज बहुत दुखी है। उस दुखी चित्रकेतु को सांत्वना देने के लिए ब्रह्मा जी के दो पुत्र अंगिरा जी और नारद मुनि पधारे हैं। बहुत सुंदर उपदेश अंगिरा जी और नारद मुनि ने दिया कि हे चित्रकेतु, तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा कभी मरता नहीं है, मरने वाला मात्र देह है। इसलिए देह के मरने पर किसी को शोक नहीं करना चाहिए। मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयान्ति नवानि देह। साक्षात भगवान के मुख से निकला है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनता है और वह नए कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तब उस पुराने कपड़े को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा एक नए शरीर को धारण करता है और यह शरीर पुराना बूढ़ा हो जाने पर इसे छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो जब व्यक्ति पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा धारण करता है तो सुखी होता है कि दुखी होता है? नए कपड़े पहनने में सुख मिलता है कि दुख मिलता है? नए कपड़े पहनने में सुख मिलता है, पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनने में जैसे सुख मिलता है, वैसे पुराने देह को त्याग कर नए देह को धारण करने वाले के लिए दुखी नहीं, सुखी होना चाहिए। बहुत सुंदर उपदेश दिया, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। चित्रकेतु महाराज अंगिरा जी और नारद मुनि के मुख से उपदेश सुनकर उनका थोड़ा शोक दूर हुआ, विवेक प्रकट हुआ। और जैसे ही विवेक प्रकट हुआ तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि आप दोनों कौन हो? इस प्रकार से इतना सुंदर उपदेश मुझे सुना रहे हो, बताइए आप दोनों कौन हो? वास्तव में शास्त्र का अकाट्य सिद्धांत है। तुरंत चित्रकेतु महाराज पूछ रहे हैं कि मुझे उपदेश देने वाले आप कौन हो? हमें भी इस संसार में उपदेश देने वाले के बारे में अवश्य जानना चाहिए, कहीं भी मुंह नहीं मार लेना चाहिए। सबसे पहले जानना चाहिए बोलने वाला कौन है, किस विषय पर बोल रहा है, किस वस्तु का आधार लेकर बोल रहा है, क्या ये अपने मन की तो बात नहीं कह रहा है? क्योंकि आज कलयुग में किसी के मन ठीक नहीं है। सबसे पहले जैसे चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि बताइए आप कौन हैं, वैसे हमें भी किसी के भी मुख से प्रवचन या कथा सुनने से पहले जान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है, और सबके मुख से ये कथा प्रवचन सुनना शुरू नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि यदि आपने गलत लोगों के मुख से थोड़ा भी सुन लिया तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत भयावह हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए किसके मुख से हम सुन रहे हैं। चित्रकेतु ने थोड़ी कथा सुनी, अच्छा लगा, इसलिए पूछ लिया कि आप कौन हो, हमें भी जानना चाहिए। और वास्तव में योग्य व्यक्ति के मुख से ही यह कथा प्रवचन इत्यादि श्रवण करना चाहिए। जैसे हम हमारे बालक को भौतिक ज्ञान भी प्राप्त कराना चाहते हैं तो उसे यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज किसी टीचर के वहां पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं रास्ते में घूमने वाले किसी को भी पकड़कर पढ़ाने लगे। गवर्नमेंट के ओर से सर्टिफिकेट सर्टिफाइड व्यक्ति जो है उसके अंडर में हमारे बालक को भौतिक ज्ञान देते हैं तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने यह भागवत का ज्ञान सुनाने के लिए चार व्यक्ति को सर्टिफाइड किया है, चार लोगों को सर्टिफिकेट दिया है और सर्टिफिकेट देकर चार संप्रदाय का निर्माण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय का निर्माण। आप सब लोग इस किताब के अंतिम पृष्ठ पर यह देख सकते हैं, देखकर सुनने में ज्यादा आपको समझ में आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया जिसे ब्रह्म संप्रदाय का निर्माण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया जिसे रुद्र संप्रदाय का निर्माण, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया उससे श्री संप्रदाय का निर्माण, और ब्रह्मा जी के चार पुत्र को सनत कुमार इत्यादि को ज्ञान दिया इससे कुमार संप्रदाय का निर्माण हुआ। देखिए वेदों में बिल्कुल क्लियर लिखा है यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो ये चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में यदि कोई ज्ञान दे रहा हो उसी से ही ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसी से ही शुद्ध ज्ञान मिलेगा। भगवान के पास शुद्ध ज्ञान है और उन्होंने ये चार लोगों को ज्ञान दिया है, उनकी गुरु शिष्य परंपरा में यदि कोई सर्टिफाइड है उससे ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धांत आपके हाथ में है, आप ढूंढ सकते हैं कौन सत्य है कौन गलत है। फिर भी इसके बारे में थोड़ा बता दूं, भगवान ने सनत कुमारों को ज्ञान दिया जिससे कुमार संप्रदाय का निर्माण हुआ, और इस परंपरा को आगे चलाने वाले निंबाकाचार्य हुए। निंबाकाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से यदि कोई भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करता है तो बिल्कुल सत्य है, उससे उनके जीवन में प्रगति होगी और भगवान की प्राप्ति होगी। दूसरा संप्रदाय श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और इस संप्रदाय का संचालन करने वाले हुए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की परंपरा में यदि आप भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करते हो तो शुद्ध ज्ञान मिलेगा। हम यह नहीं कहते हमसे ही ज्ञान प्राप्त कीजिए, इस्कॉन वाले से ही सुनिए, यहां किसी धर्म विशेष की महानता नहीं है। आप स्वतंत्र हो परंतु सत्य से परिचित कराना यह हमारा धर्म है। कुंभार संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, श्री संप्रदाय से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया जिससे रुद्र संप्रदाय का निर्माण, और इस संप्रदाय का संचालन करने वाले हुए विष्णु स्वामी, और इस विष्णु स्वामी की परंपरा में ही वल्लभाचार्य जी आए और इसी परंपरा में उन्होंने पुष्टि संप्रदाय का निर्माण किया। यह सब संप्रदाय के अंतर्गत और वह भी गुरु शिष्य परंपरा में कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वे कर सकता है। परंतु दुख की बात यह है कुमार संप्रदाय प्रायः लुप्त हो चुका है, श्री संप्रदाय कुछ हद तक सीमित है, केवल दक्षिण भारत में श्रीरंगम में इनका प्रचार प्रसार है। रुद्र संप्रदाय शुद्ध संप्रदाय है, परंतु इस संप्रदाय में ज्ञान देने की महत्ता बहुत कम है। लोगों की सेवा करना, प्रसाद खिलाना, ये उत्तम है। तब अंतिम में हमारे पास ब्रह्म संप्रदाय बचा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद, नारद ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य को, फिर तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, कृष्ण ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्�ान ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्वाचार्य के पास जो ज्ञान है वह वही ज्ञान है जो कृष्ण के पास। मध्वाचार्य ने पद्मनाभ को अपना शिष्य बनाया, पद्मनाभ ने नरहरि, नरहरि ने माधव को, इस प्रकार से बिल्कुल गुरु शिष्य की परंपरा में यह ज्ञान नीचे उतर रहा है। और धीरे 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 यह ज्ञान जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और अंत में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास ज्ञान आया। यह है सनातन सत्य, शुद्ध आपके सामने दिख रहा है। तो फिर आपका प्रश्न होगा, तो ठीक है, इनसे सुनेंगे, आपसे क्यों सुने? कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं, इसलिए कहना पड़ता है कि इनके शिष्य, इन्होंने ज्ञान दिया, इनके शिष्य हुए परम पूज्य राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज, और उनके शिष्य हुए हम। इसका अर्थ है कि यह ज्ञान बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में उतर रहा है। हो सकता है हमारे इस देह में, हमारे मन बुद्धि में कुछ कमी हो सकती है, परंतु हमारे पास जो ज्ञान है यह ज्ञान बिल्कुल शुद्ध है। जैसे एक पोस्टमैन किसी का पत्र लेकर किसी के घर पर पहुंचा देता है। हो सकता है पोस्टमैन को कुछ रोग हो, कुछ कमी हो, कुछ खामी हो, परंतु फिर भी वह एज इट इज किसी का संदेशा किसी को पहुंचा रहा है, इसलिए वह संदेशे में कोई गलती नहीं है। हो सकता है हम में कुछ कमी हो, हम में कुछ गलतियां हो, परंतु हमारे द्वारा जो ज्ञान बोला जा रहा है ये बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, इसलिए शत प्रतिशत शुद्ध ज्ञान है। तो इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी टीवी शुरू करके या कहीं भी जगह पर बैठ जाए। यह परंपरा के अलावा यदि किसी भी जगह से आप ज्ञान प्राप्त करते हो सकता है वे भागवत का ही ज्ञान हो, गीता का ही ज्ञान हो, परंतु उसमें बहुत गलतियां हो सकती हैं। जैसे मैं यहां से 5 दिन से प्रवचन सुना रहा हूं, तो कुछ लोग सुनाते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, सब कुछ कहते हैं, फिर अंत में कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मुझ बापू की शरण में आ जाओ, मेरा मंत्र जपो, आप सबका उद्धार हो जाएगा, आपको वैकुंठ मिल जाएगा। आज तो ऐसे गुरु हो गए हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं और कहते हैं मेरे मंत्र का जप करो तुम्हें वैकुंठ मिल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति को ऐसे ही गुरु मिले और कहा मेरे मंत्र का जप करो आपको वैकुंठ मिल जाएगा। व्यक्ति खुश हो गया और कह दिया, गुरुजी मैं आपको बॉम्बे भेंट में देता हूं, ये बॉम्बे शहर में आपको भेंट में देता हूं। गुरुजी ने कहा, क्या बॉम्बे तेरे बाप का है, मुझे भेंट में देने चला? तब उस शिष्य ने इतना ही कहा, तो गुरुजी वैकुंठ क्या आपके बाप का है कि आपका नाम लेकर वैकुंठ में जाऊंगा? अरे वैकुंठ तो वैकुंठ पति का वैकुंठ है, जब तक वैकुंठ पति भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तब तक वह धाम नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
किसी के भी मुख से उपदेश सुनने के पहले जान लेना चाहिए कि ये बोलने वाला कौन है। देखिए यहां चित्रकेतु महाराज पूछ रहे हैं, आप कौन हो? चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं, चरंति ही अवनो कामम ब्राह्मणा भगवत प्रिया मादृशाम ग्राम्य बुद्धि नाम बोधा योन मत लिंगिना। आप दोनों मुझे ब्राह्मण लग रहे हो, वैष्णव लग रहे हो, आप विष्णु के जन हो, कृष्ण के भक्त लग रहे हो, बताओ आप कौन हो? ग्राम्य बुद्धि नाम, मेरे जैसी ग्राम्य बुद्धि अर्थात मेरे जैसी आसक्त बुद्धि जो विषय में आसक्त रहता है, मेरे जैसे व्यक्ति का विचरण करने वाले, मेरे जैसी बुद्धि को सुधारने वाले आप कौन हो? मैंने सुना है विष्णु भूतानी लोकानां मंगलाय चरन्ति ही। विष्णु के जन वैष्णव कृष्ण के भक्त संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए घूमते रहते हैं, तो क्या आप वैष्णव तो नहीं हो, भक्त तो नहीं हो? यह सत्य बात है। भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे चरन्ति ही सब जगह पर विचरण करते हैं। क्यों? पैसे मांगने के लिए नहीं। अरे हमें किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है। वे लोगों को शुद्ध ज्ञान देने के लिए घूमते रहते हैं। विष्णु भूतानी, विष्णु के जन लोकानां मंगलाय चरन्ति ही, लोगों का मंगल करने के लिए ही विचरण करते हैं। और उनके हृदय में इच्छा होती है कि मैं जैसे कृष्ण की भक्ति करके सुखी हूं वैसे सबको सुखी बना दूं। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एक बालक आया, बेचारे के पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर जानता है कि मेरे पास इसके पेट दर्द को दूर करने की दवाई है, और वह बालक जब डॉक्टर से दवाई लेना नहीं चाहता है तब डॉक्टर बहुत दुखी होता है। ऐसे ही संसार के दुखी लोगों को देखकर वैष्णव दुखी होते हैं, उनको सुखी करना चाहते हैं, उनको पवित्र करना चाहते हैं। भगवान के भक्त वैष्णव जो होते हैं वे गंगा के समान सबका उद्धार करते हैं। वास्तव में वैष्णव की उपमा बड़े बड़े कवियों ने पारस मणि के साथ दी गई है। वैष्णव जो होते हैं स्पर्श मणि के समान होते हैं, दूसरे को पवित्र कर देते हैं, शुद्ध बना देते हैं। परंतु एक भक्त कहते हैं अरे वैष्णव की उपमा पारस मणि के साथ दे रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पारस और संत में बड़ो अंतर जान, संत साधु महात्मा भक्त में और पारस मणि में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कहते पारस लोहे को कंचन करे, पारस मणि जो होता है वे लोहे के साथ घिसेंगे तो वे पारस नहीं बनाएगा, सोना बनाएगा। पारस लोहे को कंचन करे परंतु संत करे आप समान। पारस तो केवल लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता, परंतु संत जो होते हैं वे दूसरों को अपने जैसा संत ही बना देते हैं, साधु बना देते हैं, महात्मा बना देते हैं। महात्मा हो जाता है व्यक्ति भगवान की के भक्त की सेवा करके मिल। बताइए आप कौन है? आप जैसे भक्त तो तीर्थ को भी तीर्थ बनाते हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। हे भक्तों, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले आप कौन है बताइए? क्या आप सनत कुमार तो नहीं है? कुमार नारद रुभु अंगिरा देवलो असित अपांतरमा व्यासो मार्कंडेयो अथ गौतम। क्या आप सनत कुमार तो नहीं है? क्या आप नारद तो नहीं है? आप रुभु अंगिरा देवल असित वेद व्यास जी मार्कंडेय, बताओ आप कौन है? वशिष्ठ भगवान राम कपिलो वाद रायणी दुर्वासा याज्ञ वल्कस्य जातु कर्ण तथारुणी। क्या आप वशिष्ठ ऋषि तो नहीं है? क्या आप भगवान परशुराम हो? आप कपिल हो, बाद रायणी सुखदेव गोस्वामी हो, दुर्वासा हो, याज्ञवल्क हो या आरुणी हो, कौन हो आप? रोम सरस चवनो दत्त आसुरी सपतंजलि ऋषि वेद शिरा धोम्यो मुनि पंच शिखस्त था। क्या आप लोमस ऋषि हो कि चवन ऋषि हो? दत्तात्रेय हो, पतंजलि हो, वेद शिरा धोम्य पंच शिरा, कौन हो आप? हिरण्य नाभ कौशल्य श्रुत देव ऋतध्वज एत परे सिदाश्चरंती ज्ञान हेतव। मुझे ज्ञान देने हेतु, मुझे ज्ञान देने के लिए आप यहां पर आए हो, बताओ आप कौन हो? मन में आश्चर्यजनक बात उत्पन्न होती हैं कि राजा चित्रकेतु इतने ऋषि का नाम जानते होंगे, एक ही सांस में ये सभी ऋषि का नाम बोल दिए, असित देवल व्यास कपिल बादरायण सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, कौन हो आप? राजा होते हुए भी ये सब ऋषि मुनियों का नाम पता था, परंतु आज हम साधारण मनुष्य होते हुए भी उनमें से एक ऋषि मुनि का नाम भी नहीं जानते हैं। चाहे फिल्म के गाने सब याद रहते हैं, हीरो हीरोइन के नाम याद रह जाते हैं, परंतु ऋषि मुनियों के नाम याद नहीं रहते हैं। ये हमारी अपनी स्थिति है। हमसे तो वह राजा चित्रकेतु कितना अच्छा था, इतने सारे ऋषि मुनियों का नाम जानता था। वास्तव में ये ऋषि मुनि ऐसे हैं जिनका नाम लेकर भी हृदय में पवित्रता आती है, व्यक्ति पवित्र बन जाता है। तो बताओ आप कौन हो, इनमें से आप कौन हो? तस्माद् युवाम् ग्राम प्रशोर मम मुड्ढ धिय प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यताम्। तस्माद् युवाम्, आप बताओ हे प्रभु आप कौन हो? चित्रकेतु महाराज नारद और अंगिरा ऋषि को प्रभु कह रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे इस्कॉन में जो भी आता है उसे प्रभु ही कहा जाता है। कभी कभी मन में प्रश्न होता है, ये लोग प्रभु प्रभु क्यों करते रहते हैं? नए लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, प्रभु का अर्थ क्या होता है? शास्त्र में प्रभु का अर्थ लिखा है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ। प्रभु का अर्थ होता है जो शक्य हो, पॉसिबल हो, और जो इम्पॉसिबल हो, अशक्य हो, नामुमकिन हो। जो शक्य हो उसे भी करे, जो इम्पॉसिबल हो, अशक्य, नामुमकिन हो, ऐसी चीज को भी जो करके दिखा दे उसे प्रभु कहा जाता है। तो प्रश्न होता है, ताली बजाने वाले जान गए होंगे, नहीं बजाने वालों के मन में प्रश्न हुआ होगा, तो ये जो धोती कुर्ता पहनकर बैठे उन्होंने क्या अशक्य बात शक्य कर दी है? आखिर प्रभु, प्रभु तो उसे कहते हैं जो इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल कर दे। तो ये लोगों ने क्या पॉसिबल किया है? तो बिल्कुल सत्य है, भक्ति जो है इम्पॉसिबल है। रूप गोस्वामी भक्ति सामूह सिंधु में भक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं, भक्ति सुदुर्लभा। भक्ति जो है दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। खाना पीना रहना सोना ये सब लोग कर सकते हैं, परंतु भक्ति तो विरला ही कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् ययत् सिद्ध्यति। सहस्त्रेषु मनुष्येषु, करोड़ों करोड़ों मनुष्य में कोई विरला ही मेरा भजन कर सकता है। सब महात्मा सुदुर्लभ, और ऐसा महात्मा मेरे लिए भी दुर्लभ है। भक्ति जो है बहुत दुर्लभ है, और दुर्लभ भी नहीं, सुष्ट रूपेण दुर्लभ, सुदुर्लभ है। और ऐसी भक्ति को, कृष्ण की भक्ति को यदि कोई करने लगता है तो उसे प्रभु संज्ञा दी जाती है। अब ठीक है, चित्रकेतु कहते हैं कि हे प्रभु, इम्पॉसिबल बात को भी पॉसिबल करने वाले में आप दोनों समर्थ हो। ग्राम्य पशोर मम मुठ दिय, मैं तो इतना मुठ हूं, मेरी बुद्धि इतनी मुठ है। मुठ का अर्थ जानते हैं? 100 पागल की पागलता को मिलाएंगे तब एक मूर्ख होता है, और 100 मूर्ख जब एकत्रित होते हैं तब एक मुठ बनता है। कहते हैं मैं मुठ हूं, मेरी बुद्धि मुठ के समान है। क्यों? ग्राम्य पशोर मम, एक ग्राम्य पशु के तरह मैं इस संसार की आसक्ति में फंसा हूं। अंधे तमसी महामोहे मग्नस्य मम तत उद्धारे स्वयं तु नाहम सक्त इति आह। ग्राम्य पशु, बहुत शब्द महत्वपूर्ण है। पशु का अर्थ तो आप सब लोग जानते हैं, और ग्राम्य माने गांव का पशु, शहर का नहीं। गांव के पशु की घटना आप सब लोग जानते होंगे। यहां पर एक आचार्य अपने टीका में लिख रहे हैं चित्रकेतु कहते हैं कि मैं ग्राम्य पशु गांव के पशु के समान हूं। गांव के पशु के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, कुछ बकरी भेड़ बकरी को पालने वाले होते हैं और जब उसको चराने के लिए जाते हैं तो सैकड़ों भेड़ बकरी साथ में चलती हैं और भेड़ बकरी चलाने वाला पीछे चलता है और ये भेड़ बकरी आगे आगे चलती है। तो गांव में आप सबको पता होगा, सभी गांव में कुआं तो होता है और कभी कभी गांव के कुएं में पानी खाली हो जाता है। जब उस गांव के कुएं में पानी खाली हो जाता है तो वहां पर पानी भरने के लिए कोई नहीं आता है। किसी का आना जाना नहीं होने के कारण उस कुएं के आजू बाजू में घास उग जाते हैं और घास जो होता है पूरे कुएं को आवृत कर लेता है, पता नहीं चलता है कि यहां कुआं है था या भी नहीं। हरी हरी घास से वह कुआं आवृत हो जाता है और ये जो भेड़ बकरी होते हैं वे देखते हैं कि वहां पर हरी हरी घास है, खाने में बहुत आनंद आ जाएगा। तो ये जाती है चलते 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 उस हरी घास को खाने के लिए। जैसे ही वह हरी घास को खाने के लिए आगे बढ़ती है तुरंत धड़ाम करके सिर के बस उस कुएं में गिर जाती है। अब एक गिर जाए तो कोई बात नहीं, परंतु ये तो भेड़िया ढसान, एक गई पीछे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी छह दस पूरा टोला वहां गिर जाता है। चित्र केतु कहते हैं कि मैं भी उस गांव वाले पशु के समान हूं। मैंने पहले ही कहा यह चित्र केतु की कथा नहीं है, ये हम केतु की कथा है, हम सब की कथा है। एक दृष्टांत से बहुत कुछ समझने मिलता है। प्रहलाद महाराज इस कुएं को गृह अंधकूपम कहते हैं। एक कुआ कैसा है, कहते हैं घर गृहस्थी का कुआ। इस संसार में जिन लोगों ने विवाह नहीं किया है वो लोग सोचते हैं कि विवाह करने में बहुत आनंद आ जाएगा। जैसे वो भेड़ और बकरी सोचती है कि वहां हरी हरी घास है, जैसे वो भेड़ बकरी सोचती है कि वहां हरी घास है, खाने में बहुत आनंद मिल जाएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है वे सोचते हैं कि यार फिलहाल मैं बहुत दुखी हूं, शादी करूंगा फिर आनंद आ जाएगा। जैसे वे भेड़ और बकरी हरी हरी घास खाने के लिए जाती है, अब पहला जो कवल होता है अपने मुख में घास को ले लेती है, परंतु घास में लेकर धड़ाम करके गिरती है। वैसे यहां पर भी ये महाशय विवाह तो कर लेते हैं, शुरू शुरू में बहुत आनंद आता है क्योंकि शुरू शुरू में पत्नी जो होती है आज्ञाकारी पत्नी होती है, पानी मंगाएंगे तो दूध का ग्लास लाकर देती है, सब लोग को अनुभव है। ये मैंने ये भागवत कहता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया। ये मैं केवल संस्कृत के श्लोक का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, आप ये मत समझिए मैं मेरा अनुभव कह रहा हूं। तो आप सोचेंगे प्रभु जी का घर का अनुभव होगा, कई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है भाई। भागवत में कहा गया है कथम प्रियाया, कुछ कुछ अनुभव होता है सबको, हमें भी होता है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान, श्लोक बोलना पड़ता है सबको विश्वास दिलाने के लिए। कहते कथम प्रियाया, प्रिया जब घर पर आती है व्यक्ति उसमें इतना आसक्त हो जाता है, शुरू शुरू में आनंद आता है, आज्ञाकारी पत्नी होती है, रहस्य में एकांत में बातचीत होती है, परंतु जैसे ही दो तीन साल बीतते हैं, एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं जब व्यक्ति का विवाह होता है तो पहले साल पति बोलते हैं और पत्नी सुनती है, विवाह होने के पहले साल पति बोलते हैं और पत्नी सुन लेती है सब कुछ जो भी बोले, दूसरा साल जब चढ़ता है तो पत्नी बोलती है और पति सुनता है, और तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं पड़ोसी सुनते हैं। गृह अंधकूपम, ये जो गृहस्थी है अंधेरे कुएं के समान है, व्यक्ति फंस जाता है बेचारा। हरी हरी घास खाने के लोभ में जैसे वह भेड़ और बकरी फंस जाते हैं, वैसे यहां भी हरी हरी मतलब विवाह करने में व्यक्ति फंस जाता है। कहते मैं ग्राम्य पशु, अब फंसा हुआ व्यक्ति भी बाहर निकल सकता है। कभी कभी देखा गया है कि कभी कोई भेड़ और बकरी फंस गए हो तो उसको निकालने के लिए रस्सी डाली जाती है और रस्सी से उस भेड़ और बकरी को निकाला जाता है, भाई बाहर खींच लिया जाता है। इस संसार में भी कुछ लोग ऐसे अंधेरे कुएं में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी की आसक्ति में फंसे हैं और उसको निकालने के लिए इस कौन से भक्त आते रहते हैं, रस्सी डालते रहते हैं, निकलिए भाई। परंतु बाहर निकलने की बात तो दूर रही, कोई रस्सी को पकड़ता भी नहीं है, अब कैसे बाहर निकाले। रस्सी तो सबको फेंकी गई है, अब आप चाहो तो बाहर निकल सकते हो। देखिए चित्र के तो यही कह रहे हैं, मैं ग्राम्य पशु के समान हूं, मैं इसमें फंसा हूं, रस्सी डालकर आप मुझे यहां निकालने के लिए आए हो, कौन हो आप, कृपा करके बताइए कि आप कौन हो। इस संसार में व्यक्ति वास्तव में संसार की आसक्ति में ऐसे फंस जाता है, बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। और आसक्ति में क्यों फंसता है, केवल क्षणिक सुख मिलता है और वो भी सुख सुख नहीं है, सुख सुख नहीं है। पुराणों में बहुत सुंदर कथा बताई गई है, एक समय की बात, एक व्यक्ति क्या पता कैसे भी करके जंगल में फंस गया। जंगल में फंसा तो एक शेर ने उसका पीछा किया। अब शेर तो उसको पकड़े तो तुरंत खाकर मार डाले, ये आगे आगे दौड़ा और शेर पीछे पीछे दौड़ा, बहुत दौड़ा बहुत दौड़ा, पसीना पसीना हो गया बेचारा। दौड़ते दौड़ते उन्होंने देखा कि आगे एक कुआं आ रहा है, एक कुएं से ये बात याद आ गई, आगे एक कुआं आ रहा है और उसके बाजू में एक पेड़ है और उस पेड़ की जो लता है बिल्कुल कुएं के बीचों बीच फंसी है। तो दौड़ते हुए कैसे भी छलांग लगाकर वे जो कुएं के बीच में वो पेड़ की लता लटक रही थी, पेड़ की डाली के ऊपर टंग गया। शेर तो खड़ा का खड़ा रह गया, अब क्या करे, शेर से बेचारा बच गया। शेर बाहर खड़ा है उसकी राह देख कर, ये कब बाहर निकले, और वहां बैठ गया शेर, वहां पर बैठ गया। उसे थोड़ा सुख महसूस हुआ, चलो शेर से तो बचा, चैन की सांस ली। परंतु आंख खोल के जैसे नीचे दृष्टि की तो नीचे मगरमच्छ था। अब सोचा कि कितने देर तक ये मैं पकड़ कर रखूंगा, छोड़ा तो नीचे मगरमच्छ, बाहर गया तो शेर खड़ा है। और उसी समय उसकी ऊपर दृष्टि गई तो एक अजगर धीरे 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 आगे बढ़ रहा था उनकी ओर। बाहर शेर खड़ा है, नीचे मगरमच्छ है, ऊपर से अजगर आ रहा है। परंतु उसी पेड़ की ऊपर की डाली के ऊपर एक मधुपुड़ा था और उस मधुपुड़े से मधु छू रहा था, मधु के बिंदु गिर रहे थे। उस समय मधु का बिंदु गिरा तो उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, डायरेक्ट उसके मुख में हनी जो होता है मधु गया और प्रसन्न होकर सुख का आनंद अनुभव करने लगा। वाह यार आज तो मजा आ गया। क्या वो मजा है, बाहर शेर खड़ा है, नीचे मगरमच्छ खड़ा है, ऊपर अजगर धीरे धीरे आ रहा है और एक एक बूंद गिर रही है। तो वो बूंद जैसे ही मुंह में आ रही है तो आनंद का अनुभव कर रहा है। भक्तों हमारे जीवन में ऐसा आनंद हमें मिल रहा है। अब मैं ये बताना नहीं चाहता हूं कि शेर कौन है, मगरमच्छ कौन है और अजगर कौन है, नहीं तो बुरा लग जाएगा सबको। परंतु यह सुन लीजिए, अजगर जो है वे काल के समान है, धीरे 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 व्यक्ति के निकट आ रहा है मारने के लिए। परंतु फिर भी व्यक्ति आसक्त रहता है भौतिक सुख में। पुराण में तो यह भी कथा है कि पार्वती जी ने देख लिया इस दृश्य को। पार्वती जी ने कहा प्रभु बेचारा कितना फंसा हुआ है, उसे बाहर तो निकालो। शिव जी ने कहा नहीं निकलेगा वो। पार्वती ने कहा आपको हृदय में दया नहीं आती है, मां का स्वभाव हृदय कोमल। शिव जी ने कहा मैं जानता हूं ये मनुष्य यहां पृथ्वी लोक के रहने वाले लोगों को, ये नहीं निकलेगा बाहर। पार्वती जी ने कहा एक ट्राई तो करो प्रभु जी, प्रयास तो करो। नंदी बेल के ऊपर सवार होकर आए और शिव जी ने कहा देखो देवी मैं जा रहा हूं उसे निकालने के लिए। शिव जी ने ऊपर से रस्सी फेंकी, रस्सी बाजू में, परंतु वो मध जो है आ रहा है। अब क्या करें, मध का आनंद यदि रस्सी पकड़ लिया तो मध का आनंद चला जाएगा। उस मध के क्षणिक आनंद लेने में व्यक्ति वो रस्सी को नहीं पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में सब लोग उस व्यक्ति की तरह फंसे हुए हैं। क्षण भंगुर सुख, थोड़ा सा सुख मिल जाता है, वो भी सुख सुख नहीं है, वह भी दुख निवृत्ति की अवस्था है। और ऐसे सुख के कारण लोग भगवान के भक्तों के द्वारा दिए गए उपदेश को स्वीकार नहीं करते हैं, उस रस्सी को पकड़ते नहीं है। उसे कुछ नहीं करना है, व्यक्ति को अपना उद्धार करने के लिए कोई परिश्रम मेहनत कुछ नहीं, मेहनत तो भक्तों को है। मेरा गला फाड़ रहा हूं, आपको कुछ तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, बैठकर सुनना है, प्रवचन के बाद प्रसाद लेकर चले जाओगे। अरे तकलीफ तो रस्सी खींचने वाले को है, हमें तो केवल पकड़ना है उसको, परंतु इतना भी नहीं कर सकते हैं। केवल रस्सी को पकड़ ले तो व्यक्ति का उद्धार हो जाए, परंतु इतना भी हमसे नहीं हो रहा है, कितने परवश हो चुके हैं। देखिए हमारी कमी यहां पर दिख रही है। इतनी शुद्ध परंपरा, इतना शुद्ध उपदेश, व्यक्ति को शरणागत होकर इस मार्ग को पकड़ लेना चाहिए। और यदि व्यक्ति केवल इस मार्ग को पकड़ लेता है, तुरंत भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार चित्रकेतु कह रहे हैं, ग्राम्य पशोर मम मुठ धीय प्रभु, हे प्रभु मैं तो ग्राम्य पशु के समान हूं, इस अंधेरे कुएं में फंसा हुआ हूं, तो आप मुझे इस गृह अंधकूप में से निकालने के लिए आए हो। ज्ञान दीप उदीर्यताम, आप मुझे दीपक रूपी ज्ञान प्रदान करो, मुझे ज्ञान प्रदान करो। देखिए चित्रकेतु जब सुधर गया तो उन्होंने पहली बात क्या कही, मुझे ज्ञान दो। और पहली बार जब आए थे तब क्या कहा था, मुझे पुत्र दो। पहली बार जब ये दोनों ये आए थे तब चित्रकेतु ने कहा पुत्र दो, और ये गुरु ने दे भी दिया, तो क्या सुखी हो गए? इस संसार में भी कुछ लोग गुरु के पास जाते, गुरुजी बहुत दुखी हूं, कुछ आशीर्वाद दे दो, धन मिल जाए, हाथ फिरा दो पीछे। अरे कितना भी हाथ फिर जाए और कितना भी धन मिल जाए, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, सुखी मात्र भगवान की भक्ति से हो सकता है। ये गुरुजी ने पुत्र दे दिया फिर भी ये सुखी नहीं, उल्टा और दुखी हुआ। पुत्र नहीं था तो कम दुखी था, पुत्र होने के बाद तो उसे हजारों गुना ज्यादा दुखी हो गया। परंतु अभी चित्रकेतु की बुद्धि शुद्ध हो चुकी है और कह रहे हैं कि अंधे तमसी मग्नस्य, मैं तो अंधकार में अज्ञान में हूं, ज्ञान दीप उदीर्यता, मुझे ज्ञान का दीपक जलाइए, ज्ञान प्रदान कीजिए। एक शिष्य को, एक व्यक्ति को वरिष्ठ भक्त के पास, गुरु के पास जाकर एक ही लालसा करनी चाहिए कि मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि उपदेश के द्वारा ही व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है, भगवान मिल सकते हैं। गुरु जो होते हैं वाणी से सपोर्ट करते हैं। गीता में भी जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा तो यह नहीं कहा कृष्ण को ऐसा चमत्कार कर दीजिए ये लोग मर जाए, तो कर सकते थे कृष्ण नहीं, यत श्रेयस्य निश्चितम ब्रूही तन्मय, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो, मेरे लिए जो उत्तम हो, ब्रूही बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। जितने भी लोग हैं सब लोग ने यही जिज्ञासा की है, बोलो आप, मैं सुनना चाहता हूं। याज्ञवल्क जी ने भारद्वाज ऋषि को, पार्वती ने शिव जी को, परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को, 88,000 ऋषि मुनि ने सुध गोस्वामी को एक ही जिज्ञासा, आप बोलिए हम सुनना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा उत्तम कार्य है। कहते हैं आप दीजिए, मुझे उपदेश दीजिए। वास्तव में यह उपदेश देने के लिए बहुत अच्छा मौका था, उपदेश देने के लिए भी कुछ समय होता है, और समय देखकर एक वक्ता को चाहे कि उपदेश दे दे। जैसे संसार में भी देखा गया है कि जीवन भर तक उपदेश नहीं सुनते हैं, परंतु कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण सब लोग सुनते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, समझ में आए या ना आए, क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। चित्रकेतु का प्रश्न है कि बताइए आप कौन हैं? तब अंगिरा ऋषि कहते हैं, श्री अंगिरा उवाच, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दास यंगिरा नृप। हे नृप, हे राजन, वंशीधर जी अपनी टीका में लिखते हैं, नृपेतिर निपाणाम हट स्वभावात एव पुत्र दाम इति भाव। नृप कह रहे हैं, हे राजन, तुमने राज हट की थी। तीन हट प्रसिद्ध है, बाल हट, स्त्री हट और राज हट। तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं, तो मैं वही हूं जो बहुत समय पहले आपके पास आया था। आपके पास आया था और तुमने ऐसी हट पकड़ ली, राज हट कर ली। आपको पुत्र चाहिए था तो मैंने दिया। तुम्हें पुत्र देने वाला मैं अंगिरा हूं, और येश और ये उंगली दिखा कर करते हैं, ये मेरे साथ जो है ब्रह्मसूत, ब्रह्मा जी के पुत्र साक्षात नारद भगवान ऋषि, साक्षात नारद है, भगवान के मनोवतार है और ऋषि मुनि अर्थात सर्वज्ञ है। तब चित्रकेतु कहते हैं, किम अर्थम आगता इति तत्र आह। आप यहां पर क्यों आए? इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन मग्नम तमसि दुस्तरे अत दह मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम। हम यहां पर इसलिए आए क्योंकि आपके पुत्र का अवसान हो गया। पुत्र के अवसान होने पर आप बहुत शोक कर रहे थे, और आप जैसे महात्मा, आप जैसे महापुरुष गोचरम, आप जैसे महापुरुष एक साधारण वस्तु के लिए शोक करे, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपको समझाने के लिए हम यहां पर आ गए। महापुरुष गोचरम हरि भक्तम इति। हमने सोचा कि आप भगवान के भक्त हो, आप सुसाधु व्यक्ति हो, इसलिए हम आपको उपदेश देने के लिए आए। अनुग्रहाय भवत प्राप्ता वाह मिह प्रभो ब्रह्मणियो भगवद भक्तो नावा सा दी तुम अर्हसी। हे प्रभो, हे राजन, अब ये दोनों अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि आधे तो प्रभु हो ही चुके हैं, आधे तो भक्त बन चुके हैं, आधा बाकी है। कहते हैं, प्रभु प्रभो इति ज्ञान अधिकारी ताम आह। प्रभो क्यों कहा? कहा कि वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो, तुम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। ब्राह्मणीय भगवत भक्त, और तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो और भगवान के भक्त हो। जब मैं ये प्रसंग अभ्यास कर रहा था, मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि अंगिरा ऋषि ने राजा चित्रकेतु को ब्राह्मण क्यों कहा। तुरंत मैंने वृंदावन फोन किया कि क्या चित्रकेतु ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे? तब एक आचार्य जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, भगवत भक्त इति पूर्वम एव तत्संगम प्रभावेन भक्ति बीज उदयात। ये सब बात और सबकी कथा में सुनने नहीं मिलेगी। चित्रकेतु को ब्राह्मण कह रहे हैं क्यों? श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवत भक्ति इति कुर्वंती इति। चित्रकेतु भगवान की भक्ति करते थे, चित्रकेतु भगवान की भक्ति करते थे तत्संग प्रभावेन। और भक्ति कैसे क्यों करते थे? तत्संग, अंगिरा ऋषि के इसका संग होने के कारण चित्रकेतु थोड़ी बहुत भक्ति में लगे थे, इसलिए उसे ब्राह्मण कहा गया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि क्षत्रिय होने के बाद भी चित्रकेतु को ब्राह्मण क्यों कहा गया? चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ब्राह्मण वैष्णव सेवितवाद। भले चित्रकेतु भक्ति नहीं करते थे, परंतु वैष्णव की सेवा अवश्य करते थे। भगवत भक्त संगश्च, और भक्तों का संग करते थे, तो वैष्णव की सेवा करना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, और इसलिए उसे ब्राह्मण कहा गया। अंगिरा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त हो, और अंगिरा जी का ब्राह्मण कहने का एक भाव यह भी है कि आप तो ब्राह्मण के समान हो, और ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, कभी किसी के बारे में शोक नहीं करता है, कभी किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है, इसलिए यह गुण देखकर हम आपके पास आए। तब मानो चित्रकेतु कहे, तरही पूर्वमेव ज्ञानम किम न ददाय। ठीक है, आप मुझे ज्ञान देने के लिए आए तो आपने पहले मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया? इतना रुला कर, इतना तड़पा तड़पाने के बाद क्यों ज्ञान देने के लिए आए? तब अंगिरा जी कहते हैं, तदेव ते परमम ज्ञानम ददामि गृहमागत ज्ञात्वा अन्या विनिवेशम ते पुत्रमेव ददाम्यहम। क्या बताऊ, तदेव ते परमम ज्ञानम, मैं तो ज्ञान देने के लिए ही आया था। हे चित्रकेतु, मैं तुम्हारे पास ज्ञान भक्ति देने के लिए आया था, परंतु ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशम, परंतु तुम तो पुत्र का रटन लगाकर बैठे थे, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, केवल पुत्र प्राप्ति करने में अपना अभिनिवेश कर बैठे थे, इसलिए मैं तुमको ज्ञान नहीं दे सका। वास्तव में संसार में जितने भी साधु संत महात्मा होते हैं, ये सबकी इच्छा होती है कि मैं इसे ज्ञान दूं। आज ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है, ज्ञान लेने वाले की कमी है। सब लोग चित्र केतु की तरह बैठे हैं, मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कैसे ज्ञान दे, कैसे ज्ञान दे? यदि आपके बाजू में कोई महात्मा भी बैठ गया हो, भगवत का साक्षात्कार करने वाला भी बैठा हो, परंतु आप चाहते हो पुत्र धन संपत्ति, तो आपको क्या सुनाएगा? सब कुछ है उनके पास, भगवान को मिला सकता है, फिर भी आप नहीं चाहते हो तो आप कैसे दे सकता है? मैं आया था, परंतु आपका अभिनिवेश किसी और वस्तु में था, इसलिए मैं आपको नहीं दिया, क्योंकि उस समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी पात्रता नहीं थी, आप योग्य नहीं थे। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पात्रता होनी चाहिए, और पात्रता क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही शर्त है। अंगिरा जी कहते हैं, अन्य अभिनिवेशनम शून्य। कहते हैं कि आपका अभिनिवेश किसी अन्य वस्तु में था, परंतु यदि किसी का अभिनिवेश शून्य हो जाए और एकमात्र भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा हो जाए, तब उसे कैसे भी करके भगवान की कृपा से महात्मा मिलेंगे और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु आज किसी को शुद्ध ज्ञान चाहिए ही नहीं, कोई शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है कि हम भोगों को छोड़े। आज सबको धार्मिक भी बनना है और भोग भी भोगतने हैं, अभिनिवेश तो रखना है सब वस्तुओं में, तो ऐसे लोगों को वैसे गुरु मिल जाते हैं। कहते हैं, आप भोग भोगते रहो, जो भी सिगरेट चाय तंबाकू पीना है पियो, मेरा मंत्र जपो, टाइम टू टाइम डोनेशन देते रहो, नो प्रॉब्लम। उसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं, गुरु की कमी नहीं है, जिसकी प्रकृति जैसी होती है वैसे गुरु मिल जाते हैं। भागवत प्रमाण है, अन्य अभिनिवेश, यदि आपका भगवान के अलावा और किसी भी वस्तु में अभिनिवेश है तो वैसे गुरु मिलेंगे, कहेंगे बेटा चाय पियो, पान मावा सिगरेट तंबाकू खाओ, नो प्रॉब्लम। हम सोचेंगे वाह, ये तो बहुत अच्छे गुरु हैं, ये गुरु तो काम के हैं, शिष्य भी बनाते हैं और सब छूट भी देते हैं, परंतु इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करनी है तो शुद्ध लालसा होनी चाहिए, अन्य सभी विषयों से शून्य बनना है, तब जाकर भगवान की कृपा से एक शुद्ध महात्मा गुरु आप सबके सामने उपस्थित होंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है, भगवान कैसे भी करके शुद्ध भक्तों को भेज देते हैं, ज्ञान लेने वाले की कमी है, पात्रता हमारे पास नहीं है। एक महात्मा बहुत सुंदर कथा सुनाते थे, एक बार एक व्यक्ति दूध बांटने निकला, दूध दान देने निकला कि दूध ले लो भाई, दूध ले लो भाई, दूध ले लो। तो कई लोग आए, चलो मुफ्त में मिल रहा है कौन नहीं लेगा। दूध लेने के लिए बहुत सारे आए, किसने कहा प्रभु हाथ में दूध दे दो ना, चलो भागो यहां से, हाथ में नहीं मिलता है दूध। किसने कहा जेब में दे दो, पात्र तो नहीं है हमारे पास, चलो चलो तुम भी निकलो यहां से, दूध चाहिए पात्र लेकर आओ। अब देखिए, एक साधारण दूध को प्राप्त करने के लिए पात्रता की आवश्यकता है, तो भागवत और गीता जैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता की आवश्यकता नहीं है? अवश्य है, पात्रता चाहिए। और पात्रता क्या है? अन्य अभिनिवेशम शून्यम, और सभी लालसाओं से मुक्त होकर गुरु से जिज्ञासा करना, केवल कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखना, यही है शुद्ध भावना। जब ऐसी शुद्ध भावना होगी तब शुद्ध गुरु मिलेंगे। तो मैं आया था तुम्हारे पास, परंतु मैंने देखा कि ज्ञात्वा अन्याभिनिवेशम, तुम्हारा अभिनिवेश किसी और वस्तु में था, आप पुत्र मांग रहे थे, इसलिए ते पुत्र मेव ददाम्यहम, इसलिए मैंने आपको पुत्र दे दिया। तो मान लीजिए, एक आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं, मान लीजिए चित्रकेतु ने कहा कि ननु मम अन्य अभिनिवेशे सत्य, ये ठीक है कि मेरा अभिनिवेश किसी और वस्तु में था, मैं पुत्र की कामना कर रहा था, अभी तस्य दुखोद करता, परंतु आप तो बुद्धिमान थे, चलो मैं तो पुत्र की आसक्ति में फंसा था, परंतु आप तो बहुत बड़े बुद्धिमान थे, तो आपने पहले से ही मुझे पुत्र ने न देकर ज्ञान दे दिया होता तो इतना रुला कर मरा कर क्यों ज्ञान दिया आपने। तब अंगिरा ऋषि बहुत सुंदर कहते हैं, पुत्र प्रदानम अंतरेणम दत्तम अपि ज्ञानम न सुप्रतिष्ठितम भवति। हे चित्रकेतु, मैंने तुम्हें पुत्र नहीं दिया होता तो तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठते ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुत्रोत्पत्ति विपत्ति व्याम अनुभूत दुखस्य तत् संजात वैराग्यस्य तु दत्तम ज्ञानम सुप्रतिष्ठितम भवति इति आलोच्य। कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हृदय कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं। और व्यक्ति का हृदय कोमल तब बनता है जब उसे दुख मिलता है। और जब मैं पहली बार आया तब आप इतने दुखी नहीं थे, परंतु आज आप इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि आपका हृदय कोमल हो चुका है। जैसे कोमल भूमि में ही फसल होती है, कठोर भूमि में फसल नहीं होती है। कठोर भूमि को कोमल करने के लिए हल चलाते हैं। जैसे कोमल भूमि में फसल होती है, वैसे ही कोमल हृदय में ही ज्ञान उगता है, प्रकट होता है। तो कहते हैं, मैं पहली बार आया तब इतने दुखी नहीं थे, परंतु आज आप इतने दुखी हो। और वास्तव में दुखी व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। अगले श्लोक में कहते हैं, अधुना पुत्रिणाम तापो भवे तेवानुभूयते एवं दारा गृहारायो विविधे ऐश्वर्य संपद। हे चित्र केतु, आज मैं देख रहा हूं, अधुना अभी अभी इस समय में देख रहा हूं, पुत्रिणाम तापो, आप अपने पुत्र के कारण तापो माने दुखी हो, आप अपने पुत्र से दुखी हो, पत्नी से दुखी हो, गृह से दुखी हो, ऐश्वर्य संपत्ति सब से दुखी हो, इसलिए मेरा तो काम बन गया। आप सभी ओर से दुखी हो, इसलिए उपदेश प्राप्त करने के लिए परफेक्ट हो। यह सत्य बात है। संसार में जब तक किसी व्यक्ति को दुख का अनुभव न हो, तब तक वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं बैठ सकता। इसलिए जीवन में दुख आना भी बहुत आवश्यक है। भागवत के प्रथम स्कंध में देवी कुंती के द्वारा प्रार्थना आती है, भगवान कृष्ण प्रकट होकर कहा कि बुआ जी, हे कुंती जी, मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो माता कुंती कहती है कि विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे कृष्ण, हे मेरे कृष्ण, मुझे आपको देना ही है तो मुझे दुख दो, मैं दुखी होना चाहती हूं। संसार की एक आदर्श महिला ने दुख मांगा है। हमको लगता है क्या महारानी कुंती पागल हो गई? अरे अद्भुत प्रार्थना, इसलिए भागवत में तो सैकड़ों प्रार्थना है, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना, शिव जी के द्वारा, काली नाग की पत्नी के द्वारा, गोप कुमारों के द्वारा बहुत बहुत प्रार्थना है, परंतु सबसे पहली प्रार्थना भागवत में कुंती महारानी की रखी गई, क्योंकि वह महिला ने मांगा है दुख दीजिए प्रभु, मुझे दुख दीजिए। कोई मांगता है संसार में? संसार में सब लोग यही कहते हैं, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। बाजू वाला भले भूखे मरे, परंतु सुख संपत्ति मेरे घर पर ही आए। वास्तव में भक्त भगवान से दुख मांगते हैं, विपद मुझे विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि भक्तों जब दुख का समय होता है तब ही भगवान की याद आती है। सुख के समय में कौन भगवान को याद करता है? आज भी जो धनी सुखी व्यक्ति है भगवान को नहीं मानते। कुंती महारानी ने कहा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदह पुमान। वास्तव में जिसका धनी परिवार में जन्म हुआ है, जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है और जो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा है, वे तो कृष्ण कभी आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये बड़े बड़े लोग कभी आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। उससे तो अच्छे हैं गरीब लोग जो बिचारे दुखी होकर तो आपके शरण में आते हैं। यद्यपि महारानी कुंती ने यह कहा कि बड़े बड़े लोग आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे, परंतु धन्य है प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी की कृपा कि इस संस्था के प्रचार के द्वारा बड़े से बड़े लोग भी इस भक्ति में लग गए हैं। अम्बरीश फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, जिसके पास कितना धन है उसे ही नहीं पता है, आज वे भी भगवान की माला जपते हैं, 16 माला जप करते हैं और दीक्षा प्राप्त की। मफतलाल एंड मफतलाल, बड़े बड़े लोग। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर प्रचार और इतना सुंदर भागवत और गीता का शुद्ध ज्ञान प्रचार किया कि बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग भी भक्त बन पाए। परंतु प्रायः यह देखा गया है दुखी लोग ही भगवान की भक्ति करते हैं। तो हे चित्रकेतु, क्योंकि आज तुम बहुत दुखी हो इसलिए उपदेश सुनने के लिए तुम तैयार हो, और केवल पत्नी पुत्र से ही नहीं, शब्दादयश्च विषयाश्चला राज्य विभूतयः मही राज्यम बलम कोशो भृत्या मात्य सुहत्सुजा। शब्द रूप रस आदि से, अपने राज्य से, अपनी सेना से आप सबसे दुखी हो मैं देख रहा हूं। सर्वे अपि शुर सेने में शोक मोह भयार्तिदा गंधर्व नगर प्राख्या सत्न माया मनोरथा। वास्तव में ये जितने भी लोग हैं हमारे आजू बाजू में, संसार समाज, ये जितने भी लोग हैं ये स्वप्नवत स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं कि हमारे कुछ बालक है, बच्चे हैं, ये है वो है, स्वप्न टूटते ही ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। वास्तव में ये जीवन का एक घंटे का स्वप्न है और ये जीवन भी एक स्वप्न है, थोड़ा बड़ा स्वप्न है, परंतु है तो स्वप्न ही, स्वप्न के समान है। और ये सब मात्र शोक मोह और भय देने वाले हैं। ये जितने भी लोग हैं, पुत्र पत्नी संपत्ति सेना राज्य घर शब्द रस गंध स्पर्श शरीर, ये सब कुछ शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय देखकर आरतीदा व्यक्ति को दुखी करते रहते हैं। और ये गंधर्व नगर के समान असत्य है। हे शूरसेन, चित्रकेतु को शूरसेन कह रहे हैं, कहते हैं कि हे शूरसेन, शूरसेन इति संबोधनेन, संबोधन दे रहे हैं। क्यों शूरसेन कह रहे हैं? स्वामित्वात् तव मोहेन सर्वे मोहिता संति। कहते हैं हे शूरसेन, आप सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट हो, आप पूरे शूरसेन देश के राजा हो, यदि आप इस प्रकार से मोहित हो गए तो आपकी सारी प्रजा मोहित हो जाएगी, और यदि आपको बुद्धि प्राप्त हो गई, यदि आप भक्त बन गए तो आपकी सारी प्रजा भक्त बन जाएगी। ये सत्य है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदता चरति श्रेष्ठत्व तद देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। संसार के बड़े बड़े लोग जो कार्य करते हैं, छोटे छोटे लोग उनका अनुकरण अनुगमन करते हैं, इसलिए आप बड़े हो, संसार में आपका नाम है, आपकी नामना है। आप जैसा कार्य करोगे वैसे ही ये लोग करेंगे, इसलिए आप भक्त बन जाओ। और यदि आप नहीं बने तो संसार के सब लोग मोह में रहेंगे। तो वास्तव में यह सब मिथ्या है, ये सबको मिथ्या मानकर आप भी भक्ति करने लगो। चित्रकेतु ने पूछा, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि ये सब कुछ मिथ्या है तो फिर दिख क्यों रहा है? कहते दृश्यमाना विनाथेन न दृश्यन्ते मनोभवा, कर्म विद्या यतो नाना कर्माणि मनसो भवन। वास्तव में ये जो हमें दिख रहा है, ये संबंध नाती पोता, ये सब लोग, ये सब कुछ मन का भ्रम है, मन का भ्रम है। इस संसार में मन में मान लेना, ये मान्यता ही दुख का कारण है। और अगले श्लोक में कहते हैं, संसार में दो वस्तु दुख का कारण है, एक तो संबंध, जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है उसके साथ संबंध जोड़कर उसे अति स्नेह प्रेम करने लगना, ये दुख का कारण है। ममता और संबंध तो दुख का कारण है ही, परंतु अगले श्लोक में कह रहे हैं कि संबंध के साथ यह देह भी दुख का कारण है, हमारा यह शरीर ही दुख का कारण है। अयम ही देहिनो देहो, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विधि विविधश्चो संताप क्रू गृहाद्रुत। अयम, हमारा यह देह ही दुख का कारण है। वास्तव में हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि यह देह प्राप्त हुआ है। यदि यह देह न होता तो हम भगवान के धाम में होते। कुछ लोग सोचते हैं कि यह देह को मिटाकर हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए आत्महत्या करते हैं, परंतु वे लोग नहीं जानते कि यदि यह देह को मार डालोगे तो दूसरा देह मिलेगा। देह मिलना बंद नहीं होगा, कर्म के अनुसार देह मिलते रहेंगे। तो यह देह मिलना, यह देह ही दुख का कारण है। अयम ही देहिनो देहो, शरीर ही दुख का कारण है। यदि यह शरीर न हो, भगवान के धाम में रहकर व्यक्ति नित्य सुखी हो सकता है। शरीर ही दुख का कारण है। एक समय की बात, एक राजा को बहुत बुखार आ गया, बेचारा बहुत बीमार हो गया। राजा बीमार हो गया तो सब लोग चिंतित टेंशन में, कैसे भी करके राजा का दुख दूर करना है, राजा की बीमारी हटानी है। बहुत बुखार चढ़ गया, कई वैद्यों को बुलाया गया, कई लोगों को बुलाया गया, परंतु वह बुखार ठीक नहीं हुआ। तब अंत में एक महात्मा आए और मंत्री लोग गए, महात्मा जी राजा इतने दिनों से परेशान है, बेचारे राजा को बहुत बुखार है, इसके बुखार को दूर कीजिए। तब महात्मा ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजा को देखा और देखकर कहा, लो यदि इस राजा को किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनाया जाए तो ये तुरंत ठीक हो जाएगा। आप खामखा परेशान हो रहे हो, आप सब लोग दुख का कारण ढूंढ रहे हो, इसलिए दुखी है, इसलिए दुखी है। दुख का कारण एक ही है, इसे यदि किसी सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनाया जाए तो ये सुखी हो सकता है। तो मंत्री ने कहा, मंत्री ने जितना भी सेना था सभी सेना को बुलाया और सभी दिशाओं में भेज दिया, जाओ और तुरंत सुखी व्यक्ति का कुर्ता ढूंढ कर लाओ। सारे मंत्री सभी दिशा में फैल गए, ढूंढने लगे, सबको पूछने लगे, आप सुखी हो? कौन हां बोले, सब लोग दुखी हैं। सुखी हो, सुखी हो, सुखी कोई नहीं मिला। मंत्री दुखी, मंत्री ने कहा, आप सुखी व्यक्ति को ढूंढने कहां जाए? मंत्री स्वयं घोड़े के ऊपर सवार होकर सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए गया। ढूंढते ढूंढते जा रहा तो नदी के किनारे एक नाव में एक व्यक्ति अपना गमछा घुमाते घुमाते गाना गा रहा था। और जब व्यक्ति बहुत सुखी होता है, आनंद का अनुभव करता है, तब गीत गा लेता है, गाना गाते हैं। मंत्री ने सोचा, मिल गया, ये सुखी हो सकता है। कहा, अरे भाई यहां पर आओ, यहां पर आओ, मैं कई घंटों से परेशान हूं, सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, क्या आप सुखी हो? तो दूर से उस व्यक्ति ने कहा, हां सुखी हो, वास्तव में सुखी हो? हां। कहा यहां नजदीक आओ, करीब आओ, आपका काम है। मंत्री ने उसे करीब बुलाकर कहा कि देखो भाई, राजा बहुत बीमार है और एक महात्मा ने कहा है कि यदि उस राजा को सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनाया जाए तो वो उसकी बीमारी दूर हो सकती है। तो आप मुझे पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो सुखी हो, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना कुर्ता मुझे दो, मैं राजा को पहना दूं, वो ठीक हो जाए। तब उस व्यक्ति ने इतना ही कहा कि कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूं, कुर्ते वाले सब लोग दुखी हैं। जितने भी कुर्ते वाले हैं सब लोग दुखी हैं। तात्पर्य यह है, कुर्ता माने और कुछ नहीं, कुर्ता माने हमारा यह शरीर। जिन जिन लोगों के पास यह शरीर है सब लोग दुखी हैं। शरीर ही दुख का कारण है, कहते हैं शरीर ही दुख का कारण है, इसलिए तस्मात, शरीर ही दुख का कारण है, तस्मात स्वस्थेन मनसा। अंतिम बात कह रहे हैं कि हे चित्रकेतु, शरीर ही दुख का कारण है, यह संबंध अनित्य है, ममता अनित्य है, तस्मात इसलिए। शरीर अविद्या जाल, शरीर एक अविद्या का जाल है, दुख के अलावा और कुछ देता नहीं है, नहीं है, इसलिए तस्मात स्वस्थेन मनसा। अपने मन को शुद्ध करो और अपने शुद्ध मन में सोचो, विमुष्य गति आत्मन, अपनी आत्मा और शरीर के बारे में जरा सोचो। द्वेते द्वार्थ विश्रम्भम त्यजो पश्चमम आविश। तुम सोचो, अपने शरीर के बारे में सोचो, तुम यह शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और वास्तव में हम जितने भी लोग हैं, हम सब एक यात्रा में घूम रहे हैं, शरीर यात्रा अपि, ये शरीर जो है यात्रा में है। और इस यात्रा के 84 लाख स्टॉप है, 84 लाख स्टॉप है। और इस शरीर का गंतव्य, डेस्टिनेशन प्लेस क्या है? भगवान का धाम। हम सबको भगवान के धाम में पहुंचना है, बीच में कई सारे स्टेशन है। जब तक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचता है तब तक व्यक्ति दुखी होते रहता है। हम सब का गंतव्य स्थान भगवान का धाम है, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक सब लोग दुखी। चाहे कोई भी स्टॉप आए, कोई भी स्टेशन आए, व्यक्ति दुखी का दुखी रहेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि गंतव्य स्थान पर पहुंचे, विमृश इसको जाने, आत्मा की गति को, शरीर की गति को जानकर। द्वैते द्वार्थ विश्रम्भम, ये शरीर नित्य है, यह विश्वास छोड़ दो। और यह विश्वास छोड़कर त्यजोपशमम आविश, विश्वास छोड़कर, अज्ञान छोड़कर ज्ञान को प्राप्त करो। और ये ज्ञान तब प्राप्त हो पाएगा जब तस्मात स्वस्थेन मनसा, तुम्हारा मन स्वस्थ होगा। अपने स्वस्थ मन में ये शरीर और आत्मा का भेद समझो। चित्र केतु ने कहा कि आप कह रहे हो अपने स्वस्थ मन में चित्र, शरीर और आत्मा का भेद समझो, परंतु ये मन वश में नहीं हो रहा है, ये मन ठीक से वश में नहीं हो रहा है, अब क्या करूं? गीता में भी अर्जुन का यही प्रश्न है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कृष्ण आप कहो तो मेरे गांडीर के बल से वायु को वश में कर दू, परंतु मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, कैसे वश में करो? चित्र केतु ने कहा कि आप कह रहे हो मन को वश में करो, परंतु मेरा मन वश में नहीं हो रहा है। तब अंगिरा जी थके और नारद मुनि को इशारा किया, वह आप कुछ बोलो। आंख के आंख मिलाकर, चित्र केतु को पता नहीं चले वैसे हाथ भी मारा होगा कि अब आप बोलो कुछ, मैं तो थक गया। तब श्री नारद वाच, अब नारद मुनि बोलने लगे। नारद मुनि ने कहा कि देखो चित्र केतु, आपने बहुत उपदेश सुन लिया और बहुत उपदेश सुन लिया, परंतु ये उपदेश तब तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं टिकेगा जब तक तुम मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे। इस संसार में कौन नहीं जानता है हम शरीर नहीं आत्मा है, परंतु यह बात मन में टिकती नहीं है, भूल जाते हैं। यदि इस बात को, उपदेश को, भागवत कथा इत्यादि को मन में टिकाना है तो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, एताम मंत्रोपनिषदम प्रतिच्छ प्रयतो मम याम धारयन सप्त रात्र दृष्टा संकर्षणम विभुम। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा और उस मंत्र से आपका मन वश में हो जाएगा। मन को ही वश में करना चाहते हो ना? इस संसार में सब लोग मन को लेकर दुखी हैं, सब कुछ मन में ही होता है। ये संबंध, ये ममता, ये दुख, ये सब कुछ मन के कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है, सुख और दुख का कारण है। मन को वश में करना बहुत आवश्यक है और मन को वश में करने के लिए हमारे शास्त्रों में एक ही उपाय बताया गया है। मन को वश में करने के लिए मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि मंत्र का अर्थ ही होता है मनः त्राईते इति मंत्र। जो मन का त्राण करे उसे मंत्र कहा जाता है। तो मैं जो मंत्र कहूंगा वो मंत्र जपो, उस मंत्र के द्वारा याम धारियन सप्त रात, यदि कोई व्यक्ति सात दिन यह मंत्र का जप करता है, दृष्टा शंकर शरणम विभु, सात दिन में भगवान का दर्शन कर सकता है, सात दिन में भगवान उसे मिल सकते हैं। चित्रकेतु ने कहा कि सात दिन में इतने इजी? ये लोग बेचारे सुबह से शाम तक योगा करते रहते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ ध्यान तपस्या करते हैं, बिचारों के जीवन भव के भव बीत जाते हैं तो भगवान नहीं मिलते हैं मंत्र के द्वारा सात दिन में? हाँ। चित्रकेतु ने पूछा, कोई दृष्टांत है आपके पास? तब नारद मुनि कहते, हाँ एक नहीं हजारों दृष्टांत है। यत्पाद मूल उपसुत नरेंद्र पूर्वे सर्वादयो भ्रममिमं द्वितीयं विसृज्य। हे राजन, हे नरेंद्र, एक नहीं कितना दृष्टांत। सर्वादय, सर्व माने शिवजी। आज शिवजी शिवजी इसलिए बने हैं क्योंकि वे राम और कृष्ण के नाम को, मंत्र को जपते हैं। आदय माने आचार्यगण कहते हैं, आप दृष्टांत जाना चाहते हैं, शिवजी और उनके साथ हनुमान जी, ये जितने भी लोग हैं भगवान का मंत्र जप जप कर इतने बड़े सिद्ध हो चुके हैं संसार में, जिनका नाम हो गया है। हनुमान जी नहीं तो कौन थे? भगवान की परीक्षा लेने आए थे। हनुमान जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए थे। किष्किंधा में सुग्रीव जी के साथ रहते थे और उसमें भी सूर्य देव ने उसे कहा था, कथा कहां से प्रारंभ की जाए। एक समय की बात, हनुमान जी बहुत छोटे थे, हनुमान जी महाराज बहुत छोटे थे और माता कुछ फल लेने के लिए बाहर गई और हनुमान जी महाराज को भूख लगी। भूख लगी तो रोने लगे, माता नहीं थी तो घर के प्रांगण में आकर देखा तो ऊपर आकाश में बहुत सफेद फल लटक रहा था। जानते सफेद फल क्या था? ये सूर्य देवता थे। हनुमान जी को लगा कि ये फल है। हनुमान जी पवन के पुत्र तो है ही, केसरी नंदन पवन तनई शंकर सुवन और अंजनी के पुत्र, एक साथ इतनी पहचान मात्र हनुमान जी की ही है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्यते। जो राम के दूत हैं, जिनकी गति पवन के समान है, हनुमान जी पवन के पुत्र होने के कारण देखा कि आकाश में फल है, बालक थे, उड़े पवन की गति से, गए सूर्य को खाने के लिए गए। उसी समय सूर्य ग्रहण था, राहु भी सूर्य की ओर जा रहा था। राहु ने देखा कि सूर्य को खाने के लिए तो मैं जा रहा हूं, ये कौन आ रहा है? राहु ने कहा कि ये गड़बड़ है, गलत है। इंद्र के पास जाकर कहा कि इंद्र जी, आज मेरा अवसर है सूर्य को खाने का, एक और कौन आ रहा है? इंद्र ने कहा, डरो मत, मैं उसे मार डालूंगा। इंद्र ऐरावत के ऊपर सवार होकर आया। हनुमान जी ने इंद्र के सामने देखा तो ऐरावत को देखकर लगा कि ये तो बहुत अच्छी पेपरमेंट चॉकलेट है, जिसे बच्चे लोग खाते हैं ना, मछली के शेप की और हाथी के शेप की चॉकलेट। हनुमान जी को लगा कि ये भी एक चॉकलेट है, फल है। सूर्य को छोड़कर उसकी ओर चले। इंद्र तो डरने लगे, ये मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार डालेगा। उतने में इंद्र ने अपने वज्र से उस छोटे से बालक के ऊपर प्रहार किया, हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और तुरंत हनुमान जी नीचे गिर गए। पवन देवता बहुत दुखी हुए, सारे संसार में पवन फैलाना बंद कर दिया। पवन फैलाना बंद, सब लोग आकुल व्याकुल हो गए। सभी देवता प्रकट हुए और सभी देवताओं ने जब हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अपने अपनी सामर्थ्यता का आशीर्वाद दिया, तब जाकर पवन देवता प्रसन्न हुए और हनुमान जी महाराज फिर से खड़े हुए और बड़ी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली। इंद्र ने कहा कि ये कभी किसी से हारेगा नहीं। अग्नि ने कहा कि इसको कभी कोई जला नहीं सकता है। पानी ने, वरुण देवता ने कहा कि कभी ये समुद्र में डूब नहीं सकता है। सभी देवताओं ने आशीर्वाद, तो यह आशीर्वाद प्राप्त करके, अब बंदर का स्वभाव तो आप सब लोग जानते हैं, वैसे ही चंचल होते हैं और ऊपर से इतनी शक्ति प्राप्त हो जाए तब तो हनुमान जी फिर जंगल में ऋषि मुनि जहां यज्ञ करते थे उस यज्ञ में बहुत बाधा देते थे और बाधा देते हुए पेड़ पर चढ़ जाते, ऊपर से कुछ फेंकते। उसके यज्ञ में जब बहुत बाधा होने लगी, सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर हनुमान जी को श्राप दे दिया, यद्यपि आपके पास बहुत शक्ति है परंतु इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम तुम्हारी शक्ति को भूल जाओ। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं कराएगा तब तक यह शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तब हनुमान जी सीरियस हुए कि भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फिर पढ़ने के लिए हनुमान जी सूर्य देवता के पास गए। सूर्य देवता ने कहा, देखो मैं तो इतनी तेज गति से चलता हूं, आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा। हनुमान जी का, आप टेंशन मत लो। हनुमान जी ने कहा कि मैं उल्टा उल्टा दौड़ूंगा, आप अपनी गति से चलते रहो परंतु चलते चलते मुझे उपदेश देते रहो। सूर्य देवता चल रहे हैं, हनुमान जी उल्टे उल्टे चलते चलते सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करके हनुमान जी ने कहा कि बताओ गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तब सूर्य देवता ने कहा कि गुरु दक्षिणा में सुग्रीव जो है मेरा अंश है, इसलिए सुग्रीव किष्किंधा में रह रहा है, सुग्रीव जी के पास जाओ और उसे मदद करो, उसके साथ रहो। उस दिन से हनुमान जी किष्किंधा नामक जगह में आए, सुग्रीव जी के साथ रहते थे क्योंकि बाली और सुग्रीव का झगड़ा हो चुका था। भगवान श्री रामचंद्र को वनवास मिला, सीता जी को रावण लेकर चला गया और सीता जी को ढूंढते 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 भगवान श्री रामचंद्र जब किष्किंधा नामक क्षेत्र में आए, सुग्रीव को लगा कि लगता है बाली के कुछ दूत आए हैं छुपे वेश में, इसलिए हनुमान जी को भेजा जाओ, इसकी परीक्षा लेकर आओ। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर साक्षात भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए हैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए और पूछा कि कौन हो आप। भगवान श्री रामचंद्र ने जब कहा कि मैं तो दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम हूं, इतना सुनकर ही हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। हनुमान जी के आंख में आंसू आ गया, जस अविरत अश्रु धारा बहने लगी कि प्रभु जो इस जगत की परीक्षा लेता है मैं उसकी परीक्षा लेने चला आज, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा गलत कार्य हो गया। भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान को अपने गले लगा लिया। हनुमान जी तुम तो हमारे मित्र हो। उस दिन से हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र को कह दिया कि प्रभु आज के बाद यह हनुमान आपका नाम और आपकी शरण कभी नहीं छोड़ेगा। उस दिन से लेकर आज तक हनुमान जी ने भगवान की शरण और भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ा। और उस मंत्र का प्रभाव आपने जाना, जिस दिन से हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेना प्रारंभ किया उस दिन से हनुमान जी के एक से एक पराक्रम रामायण में वर्णन है, एक से एक पराक्रम। फिर तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सुग्रीव ने अपनी चार सेना के चार विभाग किए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों जगह पर सेना को भेजा, सीता को ढूंढो। और एक सेना में जामवन जी, अंगद और हनुमान जी, ये बहुत अच्छी सेना थी, ये लोग दक्षिण की ओर गए और सभी और सब लोग बिखर गए। दक्षिण की ओर जाते जाते संपाति ने पता बताया, कहा कि वास्तव में सीता को रावण ले गया है और रावण लंका में रहता है। हनुमान जी समेत सब लोग समुद्र के पास तक पहुंच गए, परंतु समुद्र के पास पहुंचकर अब लंका में यह कंफर्म करने के लिए कौन जाए कि सीता वहां पर है या नहीं। देखिए मैं विषय से दूर नहीं जा रहा हूं, यहां पर नारद मुनि ने चित्रकेतु को कहा कि मंत्र को का जप करने से 7 दिन में भगवान मिल सकते हैं, मंत्र की क्या महिमा है यह बता रहा हूं। हनुमान जी भगवान का नाम लेकर उनकी महिमा तो देखी। बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि अब लंका में कौन जाए, कौन देखकर आए। जामवान जी कहते हैं कि देखो मैं तो जा सकता हूं, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया तब मैंने इस ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा कुछ ही क्षण में लगा दी थी, परंतु फिलहाल मैं बूढ़ा हो चुका हूं और इस अवस्था में मुझे वहां जाना बहुत कठिन है। मैं जा तो पाऊंगा परंतु वापस आने में संकोच लग रहा है। अंगद जी ने भी यही कहा। पूरी सेना में बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था कि अब लंका में कौन जाए। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जामवन जी की नजर हनुमान जी के ऊपर गई, हनुमान जी के ऊपर नजर गई, हनुमान जी खड़े थे और उस हनुमान जी की ओर दृष्टि करके जामवन जी कहते हनुमान जी क्या सोच रहे हो, याद करो अपनी शक्ति, आप पवन के पुत्र हो, भगवान श्री रामचंद्र के अवतार के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जामवन जी ने हनुमान जी को शक्ति याद कराई और शक्ति याद कराते हुए कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि ज्ञान विवेक
पवन तनय बल पवन समाना
पवन के समान, पवन के पुत्र हो, पवन तनय और पवन के समान आपकी गति है। इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए असंभव हो।
कवन संसार कठिन जग मानी जो नहीं हो
ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव हो, असंभव को भी संभव करने वाले। और हनुमान जी याद करो राम के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है।
राम काज लगी तारा सुनत ही भयउ पर्वतारा
राम के कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज पहाड़ के समान हो गए, पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लिए। हनुमान जी कैसे लग रहे थे, गोस्वामी जी लिखते हैं,
तन कबलन तन तेज राजा मानव
विशाल स्वरूप धारण करने और सिंह नाद करने लगे, सिंह के समान गरजने लगे, अद्भुत रूप प्रकट। हनुमान जी महाराज ने कहा बस अब याद मत कराओ, याद आ गया। तुरंत हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघने के लिए बाजू में एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, पर्वत के ऊपर चढ़े और पर्वत के ऊपर चढ़ के समुद्र की सीमा को देख लिए, भगवान श्री रामचंद्र को याद किए और याद करके जय श्री राम बोल के हनुमान जी महाराज छलांग लगाने के लिए तैयार। जैसे ही छलांग लगाने के लिए घुटनों से झुक गए, सारा वजन पांव के ऊपर और चरण के ऊपर वजन रखते ही जिस पहाड़ के ऊपर हनुमान जी खड़े थे वे पहाड़ ही समुद्र में गिर गया।
जय ही गिरी चरण चले उस गंगा, जय ही मेरी चरण हे ही हनुमंता चले उस गंगा।
जिस पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाने का प्रयास वो पहाड़ ही समुद्र में, और हनुमान जी आकाश में उड़े, पवन की गति से हनुमान जी उड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम के धनुष से अमोघ निकलता है वैसे हनुमान जी की गति चली।
जिमी अमोघ रघुपति करवाना ए ही बात चले हनुमाना, जिमी अमोघ रघुपति करवाना ए ही बात।
हनुमान जी चले गए और एक ही छलांग में सारे समुद्र को नाप लिए। यद्यपि बहुत बहुत विघ्न आए परंतु भगवान के नाम के प्रताप से हनुमान जी सबको पार कर गए। नारद जी कहते हैं कि इस मंत्र को जपकर हनुमान जी इतने शक्तिशाली हुए, इतने शक्तिशाली। इस संसार में चाहे हनुमान जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, वास्तव में ये तीन प्रमुख देवता हैं। ये तीनों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, शास्त्र में प्रमाण है। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, गोविंदम भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूं, अहम भजामि। शिव जी एक बार नहीं हजारों बार कह चुके रामचरित मानस और रामायण में, भजन करने लायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु मैं तो आज तक यही मानती थी कि इस संसार के ईश्वर प्रभु भगवान आप ही हो, परंतु मैंने देखा कि आप तो दूसरे किसी की माला जपते हो, आप स्वयं माला जपते हो, इसका अर्थ है कि आप भी और किसी की भक्ति करते हो। बताओ प्रभु, सुनने की बहुत लालसा हुई है, जिज्ञासा हुई है, संसार में सबसे बड़ी आराधना किसकी है, कौन बड़ा है? तो पद्म पुराण में आया है भगवान श्री शिव उवाच, शिव जी ने अपनी पत्नी को कहा, देखिए शिव जी कहते हैं शिव जी कहते हैं आराधना नाम अपि सर्वेशाम। हे देवी पार्वती, आराधना नाम अपि सर्वेशाम, सर्वेशाम सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना यदि किसी की है, आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। भगवान श्री विष्णु की आराधना, उनकी भक्ति सभी भक्तियों में श्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, ये शिवजी का कथन है। और फिर भी कुछ लोग केवल शिवजी 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 करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं शिवजी गलत है, शिवजी बहुत महान व्यक्ति हैं और भागवत उसे वैष्णव की संज्ञा देते हैं। जैसे नदी तो बहुत सारी है परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, जैसे ग्रंथ तो बहुत सारे हैं परंतु सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ भागवत है, देवता तो बहुत सारे हैं परंतु सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान अच्युत है, वैसे ही वैष्णव तो संसार में बहुत हैं परंतु सभी वैष्णव में श्रेष्ठ शिरमोर यदि कोई है तो वह वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। कहते हैं शिव आदय, शिव आदि ये मंत्र का जप करते हैं और ये मंत्र का जप करके आज शिव बने हैं। तो वास्तव में शिव जी जो करते हैं और वे जो कहते हैं वह करना चाहिए, मूर्खों की तरह नहीं बन जाना चाहिए। प्रकट यहां पर दिखाई जा रहा है कि शिव जी भगवान का मंत्र जपते हैं, भागवत प्रमाण है। और शिव जी स्वयं पद्म पुराण में अपनी पत्नी को कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति विष्णु की है, अब क्या सत्य है? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र का दूत हूं दासोस्मि। फिर भी संसार में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। वास्तव में भारत में रहकर बहुत बड़ा दुख होता है। आप देखिए इस संसार में तीन सबसे बड़े धर्म है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म। अब देखिए मुसलमान में एक ही भगवान अल्लाह, एक कोई मानेंगे। ईसाई धर्म में केवल एक ही जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त। परंतु हिंदुओं को पूछा जाए भगवान कौन है तो कहते हैं ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी है, वो भी है, आज जो पैंट शर्ट पहनकर घूमता है वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, आप भी कल बन जाएंगे भगवान, ध्यान करो भगवान का, आप ही भगवान हो जाओगे। इतने अच्छे भारत जैसी सुसंस्कृतिक भूमि के ऊपर जन्म होने के बाद भी भारत के लोग आज तक नहीं जान पाए कि भगवान कौन है और मंत्र किसका जपना चाहिए और क्या मंत्र जपना चाहिए। यहां पर नारद मुनि प्रकट कर रहे हैं जब तक मंत्र को नहीं जपोगे तब तक ये उपदेश भागवत गीता ज्ञान ये कुछ भी टिकेगा नहीं, मन वश में नहीं होगा और भगवान नहीं मिलेगा। तो अब हमारा प्रश्न यह है कि भगवान कौन है? सबसे पहला प्रश्न भगवान कौन, और भगवान को प्राप्त करने के लिए मंत्र कौन सा जपना है, इसका उत्तर हम आने वाले कल आपको देंगे। हरे कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।